میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد ہے کہ میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں اتارے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی معاشرے کو، سوسائٹی کو پر امن اور اس میں سنت و بھرا ماحول پیدا کرنے کے لیے افراد کی درست تربیت، یہ بہت ضروری ہے، ٹریننگ ضروری ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ جیسے اگر میں اچھا بنوں گا تو ظاہر ہے میرا گھر اچھا بنے گا، میرا گھر اچھا ہوگا تو میرے محلے پر اس کا اثر پڑے گا، میرا محلہ اگر اچھا ہوگا تو اس کا اثر جو ہے میرے شہر پر پڑے گا، میرا شہر اچھا بنے گا تو اس کا اثر میرے ملک پر پڑے گا۔ تو یوں دنیا میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں فرد کی تربیت صحیح معنوں میں نہ ہو، تو جب اس کو مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے تو وہ معاشرہ بھی بڑا خستہ حالی کا شکار ہوتا ہے، امن نہیں ہوتا ہے وہاں پر، محبت نہیں ہوتی وہاں، پیار نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اچھا بیہیو، اچھا سلوک کرنے کا ذہن نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے اطراف کے، چاہے وہ آفس ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا محلہ ہے، پھر جس کا جتنا ویژن ہو، ایک تو ہوتا نا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ہی ڈیولپ کرنے کا سوچتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کوئی کہ یار میرے ذریعے سے میرے گھر کو کیا بینیفٹ ملے گا، میرے گھر، کوئی گھر کے علاوہ اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنے کا، دیگر معاملات میں بہتری لانے کی سوچ بناتا ہے، تو کسی کے متعلق ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہر میں بڑا کام کرتا ہے۔ تو اسی طرح دین اسلام میں دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کا جو عظیم مقصد دیا گیا، یہ جسے سعادت مل جائے تو وہ بڑا کمال کا کام کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تربیت کی اس اہم ذمہ داری کو بوجھ اگر کوئی تصور کرتا ہے، یار یہ کیا یار بات بات پر آپ اس طرح سمجھاتے ہیں کرتے ہیں، یاد رکھیے اس سے معاشرہ بگڑتا ہے، اور اس کے اثرات اگر فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھے جا سکتے ہیں۔ یا کہ آج اگر والدین اس بات میں شکوا کرتے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ والدین خود عملی طور پر کتنے مضبوط ہیں۔ سگریٹ نہیں پیا کرو، والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے، لیکن اگر والد خود ہی بیٹے کے سامنے سگریٹ پیتا رہے گا تو وہ ظاہر سامنے نہیں تو چھپ کر ضرور پیے گا۔ اخلاقیات کے معاملات، لڑائی جھگڑے کے معاملات، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد آپس میں جھگڑا نہ کرے، لیکن کیا ہم اپنے بھائی بہنوں سے ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، تو کیا ہم ایسی طبیعت پاتے ہیں کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں؟ تو یہ جو اصلاح کا جو معاملہ ہے نا میرے پیارے اسلام بھائی، یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ بندہ خود اپنے بارے میں غور کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک دکاندار سے کوئی کسان یہ گھر کا سودا لیا کرتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ کسان اپنے گاؤں سے جب آتا تو اصلی گھی کے ایک ایک کلو کے 10 پیکٹ لے کر آتا تھا وہ، اور وہ پیکٹ جو ہے وہ دکاندار کو دے دیتا، اور اس کے بدلے وہ دکاندار سے اپنے گھر کا سامان لے لیتا تھا۔ یوں حساب کتاب چل رہا تھا۔ ایک دن جب وہ کسان گھی دے کر اپنا سامان لے کر چلا گیا تو دکاندار کے دل میں خیال ہے کہ یار یہ پیکٹ جو مجھے دے کر جاتا ہے ذرا تولوں تو صحیح، ہوتا کتنا ہے۔ اس نے جب اس کو تولا تو وہ 900 گرام نکلا۔ ایک کلو میں ہوتے ہیں 1000 گرام، اب 100 گرام کم پیکٹ میں۔ اس نے دوسرا تولا، وہ بھی 900 گرام، تیسرا تولا تو 900 گرام، یعنی کہ 10 کلو میں 1 کلو کی ڈنڈی مار دی اس نے۔ اس کو تو بڑا غصہ آیا کہ یار میں تو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا اس کسان کو، اتنا بڑا دھوکا۔ خیر اگلی مرتبہ جیسے وہ کسان آیا اس کے پاس، ابھی دکان پر چڑھا نہیں تھا کہ وہ دکاندار جو اس پر برس پڑا کہ تو دھوکے باز ہے، تو چور ہے، تو اس طرح سے دھوکا دیتا ہے، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا تھا اور تو جو گھی دے کے جاتا تھا میں رکھ لیتا تھا، تجھے سامان میں دے دیتا تھا، تو نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ یہ کر کے اس نے شور مچانا شروع کیا۔ کسان بڑا سیدھا سادہ سا آدمی تھا، وہ بڑا پریشان، پہلے تو اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے کہا کہ میری بات بھی سنو، بولو کیا بولتے ہو، آئندہ آنا نہیں میری دکان پر، میری بات تو سنو۔ کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس ترازو اور یہ باٹ باٹ کا ہوتے، میں جو تم سے چینی لے جاتا تھا تو 1 کلو چینی کا جو تم پیکٹ دیتے تھے وہ ایک حصے میں رکھتا تھا، دوسرے حصے میں گھی تول دیتا تھا، تو میرے پاس کو باٹ توڑی ہے، میں تو تمہارے دیے ہوئے چینی سے ہی اپنا گھی تولتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی اپنی حالت کیا ہوگی، کہ جو کچھ بھی ہے وہ کرتوت تو اس کا تھا نا، 900 گرام چینی تو وہ دکاندار دے رہا تھا جس کے بدلے وہ 900 گرام گھی اس کو دے رہا تھا۔ تو بگاڑ ہم سدھارنا چاہتے ہیں، خود بھی تو سدھرے بھائی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تربیت ہے نا اس کا بہت اثر ہوتا ہے، اور اس معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ کی جو زندگی آپ نے جو گزاری ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی وقتاً فوقتاً تربیت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے مزاج، عادات اور نفسیات کی شناخت میں کمال حاصل تھا، اور ہر ایک سے اس کے مرتبے کے مطابق سلوک فرماتے تھے، اور سامنے والے کی ایسی تربیت فرماتے کہ بات اس کے دل میں اتر جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، تو ان کی وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ لینا چاہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت، اس انداز کا ان صحابی رضی اللہ عنہ پر ایسا اثر ہوا कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद उनसे कहा गया कि अपनी अंगूठी ले लो, इससे कोई और नफा उठा लो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, खुदा की कसम जिस अंगूठी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया मैं उसे कभी नहीं उठाऊंगा। यानी आप अंदाजा लगाए कि वो साहबी चाहते अंगूठी फरोख करके उसकी कीमत से फायदा उठा लेते, या किसी को तोहफे में दे देते, या उसे दे देते जिसके लिए जिसको पहनना ये जायज था। लेकिन चूंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदगी का इजहार किया तो उन्होंने भी उसको हाथ नहीं लगाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर नाराजगी का इजहार किया तो उससे बचने की कोशिश की। शारह मुस्लिम हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि सहाबी रसूल के इस तरह फरमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की बजावरी और आपकी मना करदा बातों से बचने का बहुत ज्यादा एहतमाम पाया जा रहा है। ये जबानी जमा खर्च नहीं है, मोहब्बत रसूल का दावा धरे हम सब करते हैं कि ये जो इश्को मोहब्बत का जो दावा करता है, जो दावा करता है, इसकी अपनी कैफियत क्या है? क्योंकि उलमा ने लिखा है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी कसर से करता है, उसके नक्शे कदम पर चलने, उसकी अदाओं को अपनाने, उसके कॉल फेल और अमल में उसकी नकल करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। आप देखें फी जमाना, अगर नौजवानों को देखें जो फैशन करते हैं, आप पूछें कि फैशन आपने कहां से सीखा? यानी अच्छी भली कपड़े जो है वो जगह जगह से फटे हुए हैं, वो फटे हुए कपड़े जो वो पहनना फख्र महसूस कर रहा है, तो हम तो समझे कहीं शायद गिर कर आया जो फट गया, ये तो उसने फाड़ा है। क्यों? कि जनाब वो फुला अदाकार जो उसने इसी तरह के कपड़े पहने। भाई आपको क्या हो गया, आपने ऐसे अजीबोगरीब बाल क्यों रखे? पूछा जाएगा ये भी किसी की नकाली कर रहा है, तो पता चलता है क्यों भाई क्यों नकल कर रहे हैं, या मुझे अच्छा बहुत लगता है। तो हम ये देखते हैं कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी नकल करने की कोशिश करता है, क्योंकि महबूब की अदाओं को पसंद करना और अपनाना ही मोहब्बत की अलामत और मोहब्बत में सच्चाई की दलील है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पक्की सच्ची मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिसके दिल में आका की मोहब्बत कामिल नहीं उसका ईमान ही कामिल नहीं। असल मोहब्बत तो इन्हीं से करनी है कि यही वो आका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे मोहब्बत करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया में भी सुरखरू पाएंगे, ईमान की सलामती भी मिलेगी, इनके सदके इंशाल्लाह कब्र में भी राहत होगी, आखिरत में भी मंजिलें तय होंगी और इंशाल्लाह जन्नत हमारा मुकद्दर होगी। तो यहां यही हमको गौर करना है कि जिनसे मोहब्बत का दावा करते हैं उनके मामूलात क्या थे, उनके बोलने का अंदाज क्या था, उनके मुआशरे में रहने का अंदाज क्या था। तो आइए आज हम अपने इस बयान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है, आपने जो अपनी जिंदगी गुजारी, उसमें से चंद बातें सीखने की कोशिश करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुफ्तिया रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई खुश अखलाक ना था। सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा या आपके घर वालों में से जो आपको पुकारता तो आप लब्बैक में हाजिर हूं कहकर जवाब देते। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब से मुसलमान हुआ कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने पास आने से नहीं रोका, और जिस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते तो मुस्कुराते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से खुशतबई फरमाते और सबके साथ मिलजुल कर रहते, हर एक से गुफ्तगू फरमाते, इनके बच्चों से खुशतबई फरमाते, इन बच्चों को अपनी मुबारक गोद में बिठा लेते, आजाद गुलाम मिस्कीन सबकी दावतें कबूल कर लेते, मदीने के दूर दराज मकामात में रहने वाले मरीजों की इयादत के लिए तशरीफ ले जाते और माजरत करने वालों की माजरत कबूल फरमा लेते। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मेरे आका की ऐसी अदाएं, पता चलता है तो इंसान अपनाने की कोशिश तो करे कि कई ऐसे हैं। कई हमारे मुआशरे में ऐसे मिलेंगे कि खासकर अगर कोई बाहर अगर इनका कोई मामला हो ना तो बड़े मिलनसार होते हैं, वो आद भगत करेंगे, लोगों से बढ़ बढ़ कर मिलेंगे, लेकिन जैसे ही ये घर में आए तो घर में आकर मतलब इनका बिहेव अच्छा नहीं होता है, इनका अंदाज अच्छा नहीं होता है, तो घर में खुश अखलाकी क्यों नहीं है। वालिदैन अगर किसी काम का बोले तो आज का यंगस्टर जो है, जो यंग बॉय है हमारे लड़के जो है, जिनको चाहिए कि वो घर का काम करके दे, वो घर का काम करने में फौरन हामी नहीं भरते, नहीं मैं नहीं जा रहा हूं फुला को बोल दो, हालांकि वालिदैन का हुक्म मिले तो फौरन हाजिर होकर अपने काम को आगे बढ़ाएं, लेकिन क्या ऐसी तरबियत है हमारी, हम अपने बहन भाइयों से अच्छा सलूक करने वाले। आजकल के यंगस्टर्स में बात है कि अगर उनका कोई दोस्त मोटरसाइकिल ले जाए और थोड़ी देर के बाद पता चले कि एक्सीडेंट हो गया है तो दोस्त की इयादत भी करेंगे और उसकी तीमारदारी भी करेंगे, हालांकि आपकी गाड़ी लेकर गया, आपकी गाड़ी का नुकसान किया उसने, लेकिन उस पर आप उसको कोई डांटापट नहीं करेंगे, उसकी खैर खैरियत पूछेंगे। और छोटा भाई अगर मोटरसाइकिल का सिर्फ एक राउंड लगा कर आ जाए, हमारी हालत क्या होती, थप्पड़ मारते, नाराज हो जाते, हमारे दोस्त ने हमसे मोबाइल लिया गिरा दिया, टूट गई इसकी स्क्रीन, हम उससे नाराजी नहीं कर रहे, छोटे भाई ने हमारे मोबाइल को उठा लिया, खाली यूज नहीं किया है, तुमने मेरे मोबाइल को हाथ कैसे लगाया, तो पता चलता है कि हमारे अखलाक बाज़ों का बनावटी होते हैं, ये लोगों के दरमियान जरा खुश अखलाक मिलनसार कहलाएं तो हम बड़े बिछ बिछ कर मिलते हैं, लेकिन अगर वही बात हमारे घर में किसी के साथ हो जाए, बहन के साथ हो जाए, भाइयों के साथ हो जाए, छोटे भाइयों के साथ हो जाए, तो हमारा अंदाज क्या होता है, बड़े भाइयों का अदब कितना है, कितना उनका कोई हुक्म माना जाता है। वालिदैन वालिदैन मतलब फरियादे करते रहते हैं लेकिन आज हमारे अखलाक दुरुस्त नहीं है, जवाब नहीं देते। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आका से मोहब्बत की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्हीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखें कि उनको अगर कोई बुला तो लब्बैक में हाजिर हूं फरमाते, और हम आपस में लड़ने झगड़ने से हमें फुर्सत नहीं है, बात बात पर झगड़ना, बात बात पर लड़ना, गाली गलौज करना, ये आज क्या माशरे में नहीं है। इसकी बेसिक वजह यही है कि हमने इन चीजों की मालूमात नहीं ली, इनके नुकसानात कितने हैं और खुश अखलाकी के फवाइद कितने हैं ये हम जानते ही नहीं है। तो काश आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन मुबारक अदाओं का सदका हमें नसीब हो जाए और मिलनसार बन जाए। पड़ोसियों के साथ हमारे अंदाज क्या होते हैं गुफ्तगू करने, जरा सा अगर पड़ोसी के घर से कोई कचरा ही हमारे घर में गिर जाए, यानी किस कदर अब हैरान कुन हालात है कि किस कदर गुस्सा, कैसे हमारे जज्बात कत्लो गारत गरी हो जाती है, एक नहीं बीसियों अफराद आपस में मार डाले जाते हैं छोटी छोटी सी बात, कि अगर बाद में आने वाली नस्लें जब आजकल के हालात पढ़ेंगे तो लोग कहें, वो सोचेंगे कि कैसे पढ़े लिखे कहलाते थे, कि किस तरह का माहौल था 2022 में, ये अंदाज था इनका। तो अंदाज क्यों था कि हमने इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं किया। इस्लाम आपस की मोहब्बत और प्यार का दर्स देता है, इस्लाम लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता है, और यही वो खुश अखलाकियां थी कि जिसके सदके जो है वो इस्लाम फैलता गया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलता है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक देहाती मस्जिद में दाखिल हुआ और कोने में जाकर पेशाब करने लगा मस्जिद में, सहाबा किराम उसे रोकने लगे तो हुजूर ने फरमाया कि इसे ना रोको, छोड़ दो। जब उसने पेशाब कर लिया तो बुलाकर इरशाद फरमाया कि मस्जिद पेशाब और गंदगी के लिए नहीं, ये तो जिक्र इलाही नमाज और तिलावत कुरान के लिए है। एक रिवायत में है कि देहाती आपके अखलाक से इतना मुतासर हुआ कि उसने यूं बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ तशरीफ लाए, मेरे माँ बाप इन पर कुर्बान, इन्होंने ना तो मुझे डांटा और ना ही बुरा भला कहा। आज हमारे खिलाफ मिजाज तो बात हो जाए, हमारा अंदाज क्या है, कैसा जाहिलाना अंदाज है, कैसा जाहिलाना अंदाज। यानी एक बाप के मुताबिक मैंने पढ़ा कि वो नई गाड़ी लेकर आया। अब नई गाड़ी होती है तो जरा मोहब्बत भी बहुत होती है उससे। एक मतलब अपने गाड़ी को गैरेज में ना कपड़ा मार रहा था, साफ कर रहा था, तो उसका बेटा उसने देखा, वो छोटा सा जो बेटा था तो वो गाड़ी पर कुछ नोकदार चीज से कुछ लिख रहा था। वो नई गाड़ी, आपने ये देखा तो उसको तो बहुत गुस्सा आया, और उसके हाथ में कोई पेचकस या कोई ऐसी भारी सी चीज आई, उसने लिया और उसके बच्चे को हाथ पर मारने लगा, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। अब वो पांच छह जरबे तो लगा दी, वो बच्चा चीखो पुकार, लेकिन बच्चे का हाथ पकड़कर उसने मारा उसके हाथों पर। खैर अब उसको जैसे होश आया तो उसका बच्चे का हाथ तो खुनम खुन हो चुका था, भागे अस्पताल लेकर। अब जब अस्पताल लेकर गए, उसके एक्सरे वगैरह हुए तो पता चला कि उंगलियों में इतने फ्रैक्चर हो चुके हैं कि उंगलियां काटनी पड़ेंगी, और उस छोटे से बच्चे की उंगलियां काट दी गई। अब जाने गुस्सा तो आ ही गया था, अब वो पट्टी वट्टी बंधी, और जैसे बच्चा होश में आया उसने कहा अब्बू मेरी उंगलियां कब आएंगी, यूं उसने पूछा, तो बाप रोने लगा। अब रोते रोते वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपने घर चला गया। घर जाकर उसने वो गाड़ी थी जिस पर उस बच्चे ने कुछ लिखा था, तो वो बस वो गाड़ी गैरेज में जैसे घुसा, गाड़ी नजर आई तो वो गाड़ी से उसको नफरत होने लगी, उसने गाड़ी पे लाते मारना शुरू। अब जैसे ही उस जगह पर, जिस जगह पर उसके बच्चे ने कुछ लिखना चाहा था, जब उसकी नजर पड़ी तो हैरान रह गया कि वो जो बच्चा लिख रहा था ना, वो ये लिख रहा था आई लव यू पापा। यानी उसने नादानी की, लेकिन उसने इजहार किया था कि अब्बू मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन ये अब्बू कैसी मोहब्बत कर रहा है उससे कि जरा सा खिलाफ मिजाज बात हुई थी उसकी उंगलियां तोड़ डाली है, जो काट के हाथ ही कट गए उसका। तो हमारा क्या अंदाज है, हम अगर अपने आप को भी देखें तो क्या हम में भी कोई ऐसी बर्दाश्त है, या हम बिल्कुल आनन फानन सब कुछ फायर कर देते हैं। आज देखें जिनके घर टूटते हैं उनके पीछे क्या राज है, यही गुस्सा है, यही बदअखलाकी है कि चार चार पांच पांच बच्चे हो गए, आपको एक वक्त का खाना अगर सही नहीं मिला आपने तलाक दे दी। ये कैसा माहौल है, आपको दावत में मिलाया, आपको बैठने की जगह नहीं मिली, आप नाराज हो गए, आपने उससे ताल्लुक तोड़ दिया। आपकी वालिदा ने आपको पाल पाल के इतना बड़ा किया, एक मरतब अगर आपके कपड़ों पर इस्त्री नहीं की आपने ताल्लुक तोड़ दिया। आपको वक्त पर खाना नहीं मिला तो आपने अपनी बहन से बातचीत बंद कर दी। ये कैसा माहौल है, हमारा ये अंदाज कैसे हम मुआशरे को सुधारेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब पढ़ते हैं तो यही दर्स मिलता है कि किरदार मुस्तफा पाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से तरबियत हासिल करें। और कुरान पाक में इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाई गई, चुनाचे सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 में इरशाद हुआ, लकद कान लकुम फी रसूल इल्लाही उस्वतुन हसना। आसान तर्जमे कुरान कंजुल इरफान, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना मौजूद है। तो हमें तो इस सारी तरबियत के रास्ते दे दिए गए, हमें बता दिया गया कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह इस आयत मुबारका की तहत फरमाते कि मालूम हुआ कामयाब जिंदगी वही है जो आका के नक्शे कदम पर हो। अगर हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा सोना, हमारा जागना अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हो जाए तो ये सारे काम इबादत हो जाए। एक गैर मुस्लिम ने, एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम में मुकालमा हुआ, तो मुसलमान ने गैर मुस्लिम से पूछा कि तुम अपने खुदा की कितनी इबादत करते, उसने तो कहा कि मैं हरिद्वार को जाता हूँ, दो 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 घंटे में गुजारता हूँ, इबादत करता हूँ। कहा तुम कितनी करते हो? कहा मैं तो डबल 12 घंटा 24 घंटे इबादत करता हूँ। 24 घंटे कैसे इबादत हो सकती है? तुम तो खाते पीते सोते जागते बिगर घरेलू मामला कारोबारी मामला सब करते हो। कहा मैं सब काम करता हूँ लेकिन हर काम अपने नबी के तरीके के मुताबिक करता हूँ। मेरा सोना नबी के तरीके पर, मेरा जागना नबी के तरीके पर, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरे मामलात करना, ये सब मेरे नबी के तरीके पर है, लिहाजा मेरा हर काम इबादत में शुमार हो जाता है। और फिर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये जो सुन्नत से जो हम सीखते हैं इस पर जो अमल होता है, सुभान अल्लाह, उलमा फरमाते हैं कि सुन्नतों पर अमल करने वाले को रब्बे करीम की रिजा नसीब होती है, अल्लाह राजी होता है। सुन्नतों पर अमल करने वालों का शुमार अल्लाह के पसंदीदा बंदों में होता है। ये सुन्नतों पर जो अमल होता है इससे खौफ खुदा नसीब होता है, ये जो सुन्नतों पर अमल होता है इससे फिक्र आखरत नसीब होती है, और सुन्नतों पर अमल करने वालों को हकीकी मोहब्बत रसूल नसीब होती है। अल्लाह के नबी के नाम पर तो जान कुर्बान करते हैं लेकिन अमल के जो जाहिर मोहब्बत का दावा करता है वो सुन्नतों पर अमल भी तो करेगा। हजरत अली बिन हुसैन रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत इबादतुल्लाह तबरी रहमतुल्लाही अलैह को ख्वाब में देखा और पूछा मा फअल अल्लाह बिका, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? हजरत हिबतुल्लाह रहमतुल्लाही अलैह ने जवाब दिया अल्लाह पाक ने मेरी मगफरत फरमा दी। अर्ज किया किस सबब से? तो उन्होंने राजदाराना अंदाज में कहा सुन्नत मुबारका पर अमल की वजह से। अब हमें अव्वल तो पता ही नहीं सुन्नत क्या है और अमल हो तो फिर ये एक अलग मरहला है। पता हो तो अमल करने में कितना अपने को सोचो विचार बनती है। तो प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा फरमान है, यकीन माने अगर इसको रचा बसा लेते ना तो ये अमल करना आसान लगता है, मजा आता है। अल्लाह के नबी फरमाते कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। कितनी प्यारी विशारत है। लेकिन आज हमारा अंदाज क्या है मेरे प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों? अल्लाह करे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने में थोड़ा हिम्मत कर जाए, और ये दुनिया और आखिरत दोनों की बरकतें नसीब होती है। जबरदस्त मुहद्दिस हजरत हुदबा बिन खालिद रहमतुल्लाही अलैह, आपको खलीफा मामून रशीद ने आपकी दावत की, दावत पर बुलाया। अब जब खाने से आप फारिग हुए तो दस्तरखान पर जो दाने गिरे थे वो उठा उठा कर खाने लगे। अब खलीफा बगदाद मामून नशीद ने जब ये देखा तो हैरान होकर कहा कि शेख आपका पेट नहीं भरा, कुछ और ला दूं? आपने फरमाया क्यों नहीं? दरअसल बात ये है कि मुझसे हजरत हम्माद बिन सलमा रजी अल्लाह अन्हु ने एक हदीस बयान फरमाई कि जो शख्स दस्तरखान के नीचे गिरे हुए टुकड़ों को चुन चुन कर खाएगा वो तंग दस्ती से बेखौफ हो जाएगा, यानी उसकी तंग दस्ती दूर हो जाएगी। मैं इसी हदीस पर अमल कर रहा हूं। अब ये सुनकर खलीफा को बहुत मजा आया, इसी प्यारी फजीलत सुनाई, तो आपने खादिम की तरफ इशारा किया और वो 1000 दीनार 1000 सोने के सिक्के रुमाल में बांध कर लाया। खलीफा बगदाद मामून रशीद ने वो दीनार हुदबा बिन खालिद रहमतुल्लाही अली की खिदमत में बतौर नजराना पेश किया तो हुदबा बिन खालिद मुस्कुराने लगे, कहा कि देखो मैंने अल्लाह के नबी के इस फरमान पर कि जो दस्तरखान के नीचे गिरे हुए दाने चुन चुन कर खाएगा अल्लाह उसको तंगदस्ती से बेखौफ कर देगा, मैंने इस हदीस पर अमल किया, इसकी बरकत फौरन जाहिर हो गई कि 1000 सोने की अशरफिया मिल गई। ये तो दुनिया में, ये तो दुनिया में ये फजीलत मिल रही। और भी मोहब्बत का तकाजा तो यही है ना। लेकिन आज अगर मुझे मदनी चैनल पर जो बैठे देख रहे हैं तो आप देखें कि हमारी दस्तरखान की कैफियत क्या है, हमारी प्लेटों का हाल क्या है जिसमें हम खाना खा रहे हैं, हमारे जो अतराफ में जो बैठे उन सबकी प्लेट उगाल किया है, हमारे घर से कितना खाना जाया हो रहा है, हमारे घर से कितना खाना फेंका जा रहा है, हमारे यहां होने वाली दावतों में किस कदर खाना जो है वो डस्टबिन की नजर हो रहा है, कितना जाया होता है। और ये खाना जाया होना ये तंग दस्ती लाने का एक सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, दरवाजे पर रोटी का टुकड़ा पड़ा देखा, उठाकर पहुंचा, साफ किया और खा लिया। फरमाया कि ए आयशा, इस रोटी का इकराम करो कि ये रोटी जिस कौम से भागी है दोबारा लौट कर नहीं आई। हम कहते हैं कि जना बरकत नहीं है, पहले घर में एक कमाता था सारे खाते थे, आज सारे कमाते फिर भी पूरा नहीं होता, वजह क्या है? देखें हमारे घर में, हमारे दस्तरखानों में, हमारे किचन में, हमारे मामलात में किस कदर जाया हो रहा है। याद रखिए कि दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाना ये रिस्क में बरकत लाता है, तंग दस्ती ये दूर होती है। और जाहिर है अगर इसकी बेहुरमती के बारे में सोचा जाए तो नालियों, गंदी नालियों में ये सारे जर्रात और टुकड़े ये हमें नजर आएंगे। और फिर इन बुजुर्ग का अंदाज देखें, इतनी बड़ी दावत की, खुद यूं समझें कि मेहमान खुसूसी दे, दावत की थी ना आपकी, लेकिन आपने ये सोच करके जनाब लोग क्या कहेंगे, ये हमारा अलग कल्चर है कि हम दस्तरखान पे बैठे होते हमारे सामने रोटी के टुकड़े जा रहे होते हैं कि जनाब फेंके जाएंगे और हम उठाते नहीं है कि जनाब उठाकर खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। और यही सुन्नतों पर अमल करने में एक बहुत बड़ी रुकावट है कि लोग क्या कहेंगे, मैं इमामा पहनूंगा लोग क्या कहेंगे, मैं सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनूंगा लोग क्या कहेंगे, मेरा तो ये स्टैंडर्ड है, मेरा तो ये स्टैंडर्ड है। अरे स्टैंडर्ड को क्या करना है, हमें तो कब्र में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ जाना है ताकि इसकी बरकत से हमारी कब्रें भी जगमगा जाए। कयामत का दिन होगा जिनके लिए आज हम कोशिशें कर रहे हैं, इबादतों की तरफ ध्यान नहीं देते, कमाने में लगे हुए जनाब बच्चों का तो यूं तो फलाना, लेकिन कयामत के दिन तो कोई एक नेकी भी नहीं देगा। हुज़ूर शफीक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी सुन्नतों से मोहब्बत की होगी इंशाअल्लाह करीम उनकी शफात नसीब होगी। और बिशारत अभी मैंने सुनाई कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो जरा सी हिम्मत करने की बात है, जरा सी हिम्मत करने की बात है। दावत इस्लामी ने इस माशरे में ये इनकलाब लाई है, दावत इस्लामी, जी हाँ, दावत इस्लामी में ऐसे कई नौजवान जिन्होंने खानदान में शायद पहला फर्द होकर दाढ़ी रखी और आज उनके वो बिल्कुल कहते हैं कि हमारे खानदान में अब कोई ऐसा मर्द ही नहीं रहा जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो। आज उनकी कोशिश थी ना, एक ने हिम्मत की तो आज खानदान में तब्दीली आई है। एक हिम्मत करे कि जनाब मैं भी इमामा पहनूं, हो सकता है आपके बच्चे भी इमामे वाले हो जाए। एक हिम्मत करे कि इंशाल्लाह अब हमारे घर में नमाजों का दौर दौरा होगा, नमाजें पढ़ी जाएंगी। तो बहरहाल मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सीरत सहाबा को देखें कि वो देखा करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज क्या थे। सुभान अल्लाह, एक किताब है मकतबतुल मदीना की, सहाबा किराम का इश्क रसूल, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़े, तकरीबन 150 सफात की होगी तकरीबन किताब, बहुत प्यारी किताब। उसमें पेज नंबर 27 पर है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक सहाबी जो कि दर्जी थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर खाने की दावत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पुरखलूस दावत को कबूल फरमाया और मुकर्रा दिन उन सहाबी के यहाँ चले गए। कहते हैं कि मैं भी साथ था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तवाज़ो के लिए जौ की रोटी और सालन पेश किया गया जिसमें कद्दू और खुश किया हुआ नमकीन गोश्त था। खाने के दौरान मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप प्याले के किनारों से कद्दू की काशें ने टुकड़े तलाश कर रहे थे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते, अब देखिए सहाबी का इश्क, कि जब से मैंने देखा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू को इतना पसंद फरमाते हैं, उसी दिन से मैंने अपने लिए कद्दू को पसंद करने लगा। इश्क व मोहब्बत की बात है ना, मोहब्बत की बात है। और मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान इस हदीस पाक की शरह में इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस से चंद मसले मालूम हुए। एक ये कि अपने खुद्दाम और गुलामों की दावत कबूल करनी चाहिए। जी हाँ, ये लेसन है, ये लेसन है। घर के अफराद जो इस वक्त मदनी चैनल पर देख रहे हैं, जो यहां बैठकर सुन रहे हैं, ये लेसन है कि कभी कोई ऐसा मौका भी तो आए ना। अमीर सुन्नत मुज़ाकरा फरमा रहे थे कि आपके तहत जो काम कर रहे हैं, कभी तो वो एक खाने का एक ही लुकमा, मोहब्बत प्यार भरा लुकमा अपने मुलाजिम के मुंह में डालकर तो देखें। ये जो बात होगा, लोग कहते हैं ना कि यार ये कंपनी है यार, इसमें मुलाजिम 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल तक काम करते हैं, इसका रीजन क्या होता है? ये मुलाजिम सेठ को छोड़कर जाते नहीं। क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए कि उस सेठ की मोहब्बतें ऐसी होती हैं, उस सेठ का अंदाज ऐसा होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी ऐसे वाकयात हैं कि किसी को कहा गया कि आप चाहें तो अपने घर वालों के पास चले जाएं, काका मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता है। तो मोहब्बत है, प्यार। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह ये मसला भी पता चला कि खादिम को अपने साथ एक प्याले में खिलाना ये बहुत अच्छा है, अल्लाह अकबर। तीसरा, कद्दू पसंद करना सुन्नत है। चौथा, सुन्नत से मोहब्बत करना सहाबा का तरीका है। और आखिरी फायदा बयान करते हुए फरमाते हैं कि खादिम प्याले से बोटियां या कद्दू चुनकर मखदूम के सामने रख सकता है। तो बहरहाल मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और अदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, ये बात करते हुए जरूरतन मुस्कुराना, ये भी हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत और बहुत प्यारी अदा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इस तरह हंसते नहीं देखा जिसमें आपका हल्क देख लेते ही, क्योंकि आप सिर्फ मुस्कुराया करते थे। तो बातचीत करते हुए मुस्कुराना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारी हो सकता है हम कहें कि यार मैं तो मुस्कुराता हूं, हो सकता है मैं तो बहुत मशहूर हूं, मार्केट में मेरी दुकान चलती है, इसलिए कि यार मुस्कुराता बहुत है। लेकिन ये मुस्कुराहट क्या दुकान पर ही है? 8 से 4 ही है क्या? आप जरा किसी कंपनी में ऑपरेटर हैं और किसी कंपनी में आपको फोन रिसीव करना है, वो कंपनी में जैसे भी फोन आए, जितनी भी बदतमीजी करे, आप उसे फोन पे बड़ी खुश अखलाकी से जी 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 और कुछ कह दीजिए, और कुछ कह दीजिए, बस 10 मिनट बाकी है, 4 बजे मेरा टाइम खत्म हो रहा है, 4 बजे के बाद फोन करें, मैं आपको अपने अखलाक बताऊंगा कि क्या है। तो ये बात होकर हमारी ड्यूटी टाइम फिक्स होता है कि इस वक्त से इस वक्त तक हम मुस्कुराएंगे। दुकानदार है तो दुकानदार ये सिर्फ दुकान पर ही मुस्कुराएंगे, यूं लगता है जैसे दुकान का शटर गिराते तो ये मुस्कुराहट, खुश अखलाकी, हंसना बोलना, ये सारा भी दुकान बंद करके आते। और जैसे ही घर पर आए तो दरवाजा खटखटाए, अंदर से बच्चे कहते अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, सो जाओ सो जाओ। इसका मतलब क्या कि अब्बू अभी घर में घुसेंगे तो ये धाड़ना शुरू करेंगे, चीखना चिल्लाना शुरू करेंगे। भाई मार्केट में तो आप बड़े मशहूर हैं, मार्केट में तो लोग अपने बच्चों को आपकी दुकान पर भेजने की यार बड़ी मोहब्बत से बात करता है, ऑफिस में तो आपकी मिलनसारी के तो लोग तो चर्चे करते हैं यार बड़े मुस्कुरा। लेकिन वालदा से आपकी मुलाकात या मुस्कुराना कहाँ है? घर में मुस्कुराना कहाँ है? या अगर खुदा कभी मुस्कुराना आज सुन के कुछ करे भी तो घर वाले हैरान हो जाएंगे कि खैरियत तो है, आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा, आज क्यों आप मुस्कुरा रहे हैं? हम भी कहते कि भाई सुना है कि आका की सुन्नत है, लिहाजा अब से मैं घर में भी मुस्कुराया करूंगा। वाह क्या बात है मनी, हो सकता है आप कहेंगे यार घर जाओ तो यार कभी ये भी मसला तो ये भी मसला, तो मसले तो है ही ना भाई, हमसे भी तो गलतियां होती हैं। घर में भी नरम गरम खाना मिल जाए तो हर वक्त डांट डपट थोड़ी जरूरी है, मोहब्बत प्यार से भी बात की जा सकती है। लेकिन बहरहाल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुस्कुराया करते, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने कई मौके पर मुस्कुराते देखा। صحابہ کرام علی رضوان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کی ادا کو ادا کرتے ہوئے مسکرایا کرتے تھے. اللہ اکبر, سب مسکرانے بھائی ہے, صحابہ کرام کی اس ادا کو ہم بھی ادا کرتے ہیں. اور جب کوئی مسکرائے نا تو اس کو دعا دی جاتی ہے, ادحک اللہ سنہ کا. دیکھو اسلام کی کیسی خوبصورت تربیت ہے کہ کسی کو مسکراتا دیکھے تو مسکراتے ہوئے دعا کرنے, ادحک اللہ سنہ کا, کہ اللہ پاک تجھے ہمیشہ مسکراتا رکھے. کیسا ہمارا پیارا دین ہے, کیسا پیاری تربیت ہے. تو خیر, حضرت ام دردا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے بچوں کے ابو ابو دردا رضی اللہ عنہ جب بھی بات کرتے مسکراتا. آپ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے ابو دردا سے پوچھا کہ آپ اس عادت کو ترک کر دیجئے ورنہ لوگ آپ کو احمق سمجھنے لگیں گے. تو حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کرتے دیکھا یا سنا آپ مسکراتے تھے, یعنی میں بھی اسی سنت پر عمل کی نیت سے ایسا کرتا ہوں. یہ انداز ہے. پھر اسی طرح آج ہم آقا کی پیاری پیاری اداؤں کا بیان سن رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو پاؤں جما کر چلتے ہے نا. ہم دیکھیں ہم کبھی چلتے تو بعض اوقات ہمارے پاؤں لڑک جاتے ہیں, لڑک جاتے ہیں. تو پاؤں جما کر چلنا گویا بلندی سے نیچے اترتا معلوم ہوتے. ایک روایت میں ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو پوری قوت سے چلتے تھے, کاہل کی طرح نہیں چلتے تھے. تو یہ بھی ایک انداز ہے. اور ہم اپنا انداز دیکھیں کہ ہماری بعضوں کا جو چلنا ہے نا وہ تھوڑا سا تکبر کے ساتھ ہو جاتا. اگر کبھی کوئی نیا سوٹ پہن لیا, نئے کلف والے کپڑے پہن لیے تو پھر تو کوئی اسٹائل ہی الگ ہوتا. پھر بعض دادا نے اس میں اگر سونے کی ماد اللہ چینے پہنتے ہوں تو ایسے موقع پر تو پھر گریبان بھی کھلا رکھیں گے, پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی چین پہنی ہے. کوئی لاکٹ سجائے تو اس کو بھی دکھانے کے لیے ذرا سا نہیں نہیں, اکڑ کر چلنا یہ پسند نہیں ہے. جی ہاں, قرآن پاک میں اس کا بیان ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل, تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا. تو چلنے کے بھی آداب ہمارے اسلام نے ہم کو سکھائے کہ لفنگوں کی طرح نہیں, ادھر ادھر پریشان نظری سے نہیں, پروقار انداز سے چلنا ہے. موقع ہو تو سڑک کے کنارے چلیں, اتنا نہ اتنا تیز چلیں کہ لوگ سمجھے کہ بھاگا جا رہا ہے, نہ اتنا آہستہ چلیں کہ لوگ کہیں لگتا ہے طبیعت صحیح نہیں ہے اس کی. پروقار انداز سے اکڑ کر چلنا یہ شرفا کی چال نہیں ہے. چلنے میں یہ بھی احتیاط کریں کہ جوتوں کی دھمک پیدا نہ ہو. بعد وہ کہتے ہو نا سیڑھی چڑھ رہے تو پہلی منزل سے پتہ چل جائے کہ آ رہے بھائی, تو ایسا نہیں, پٹاک 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 یہ آواز, یہ انداز اچھا نہیں ہے. راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں, پھدکتے ہوئے بازاری انداز میں نہ چلیں بلکہ نظریں نیچی کیے ہوئے پروقار انداز سے چلیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلام بھائیو, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے, 550 سنتیں اور آداب. اس کتاب کو لیجئے, اس کو پڑھیے, اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں.